हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन अभय की नजरें बार बार सिर्फ और सिर्फ झलक पर ही जाकर ठहर रही थीं। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक अनकही जिज्ञासा भी। वहीं कबीर मन में सोचने लगा था, लगता है अब ये नालायक अपनी होने वाली भाभी को भी इस तरह से गंदी नजरों से देख रहा है। वो बार बार उसे घूर रहा था। उधर आदित्य ने अभय को देखकर कहा, मिस मल्होत्रा, ये मेरे कजिन ब्रदर हैं, अभय राणा। तब अभय ने सिंपल सा हेलो कहा। वहीं झलक को चोट लगी थी, उसके घुटनों में काफी दर्द महसूस हो रहा था, तो उसे लगा कि एक बार उस जगह को चेक कर लेना चाहिए, कहीं सूजन तो नहीं आ गई हो। उसने ब्लैक पैंट पहनी थी, तो अगर ब्लड वगैरह भी निकला होगा तो उसे दिखाई नहीं दिया था। फिलहाल वो अपने कमरे में चली गई। अब अभय का हाल ऐसा लग रहा था कि जो थोड़ी देर पहले हंसी मजाक कर रहा था, झलक को देखने के बाद एकदम से उसका चेहरा पूरी तरह शांत हो गया। ऐसा लगने लगा था मानो वो किसी गहरी सोच में डूब गया हो। फिलहाल कबीर ने अभय को कोहनी मारते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहा है तू? तो ऐसा कहीं गुम हो गया है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो तुझे। लेकिन अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर दादाजी को देखकर बोला, दादाजी बहुत रात हो गई है, हमें अब घर के लिए निकलना चाहिए। दिग्विजय जी बोले, अरे अभी तो कॉफी पी लो, उसके बाद आप लोग चले जाना। अरे हाँ, अभी तो बच्चे आए हैं, उनसे मिल लो, चलो फिर चले जाना, दिग्विजय जी ने दोबारा कहा। लेकिन तभी अभय एकदम सख्ती से बोला, नहीं दादाजी, हमें अब निकलना चाहिए। वैसे भी हम लोग काम करके आए होंगे, रात का वक्त है, सब थक गए होंगे, आराम की सबको जरूरत है, अभी चलना चाहिए। आप लोग बाहर गाड़ी में इंतजार करो, मैं आता हूँ। ये बोलकर अभय ने नपे तुले अंदाज में सबको देखा और सधे कदमों से बाहर निकल गया। अभय का उखड़ा हुआ मूड सभी ने महसूस कर लिया था। कबीर को लगा कि कहीं उसके मजाक वाली बात को उसने सीरियस तो नहीं ले लिया जो इस तरह अचानक वहां से बाहर चला गया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिलहाल वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। वहीं आदित्य भी चौंक गया, क्योंकि बेसिकली अभय ऐसा करता नहीं है। वो तो अक्सर कहता है, अभी तो मजा आ रहा है, कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा इसलिए चला गया, वरना उसके लिए तो पूरी रात महफिल सजा दो, वो पूरी रात ना उठे। ये बात उसने माहौल हल्का करने के लिए कही। दिग्विजय जी भी हल्का मुस्कुरा दिए, बोले, फिर भी बच्चों को लेकर यहां आया, वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आते रहना, अच्छा लगता है इस तरह से आना। ये बोलकर उन्होंने अच्छे माहौल में उन लोगों को विदा कर दिया। वहीं आदित्य जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर झलक के कमरे की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में झलक को देखने की एक बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। आज उसके करीब जाकर उसे ऐसा लगने लगा था मानो उसकी जिंदगी में अगर कोई आएगी तो सिर्फ और सिर्फ झलक ही आएगी। उसके दिल की हालत कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो रखी थी, जिसे वहां सभी साफ महसूस कर रहे थे। अनामिका ने आदित्य की आंखों की बेचैनी को साफ महसूस कर लिया और बोली, मिस्टर राणा, अगर आप चाहें तो जाकर झलक से ऊपर कमरे में मिल सकते हैं। अचानक बिना किसी को अंदाजा दिए उसने ये बात कह दी। आदित्य थोड़ा झेंप गया और फटाफट बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उधर दूसरी ओर खुराना मेंशन में अजीब सा माहौल था। इस वक्त सिद्धार्थ गुस्से से तमतमाया बैठा था। आकांक्षा ओबेरॉय अपनी माँ के साथ वहां पहुंच चुकी थी और सभी लोग मिलकर पूरी महफिल जमाए बैठे थे। क्योंकि सिद्धार्थ, आकांक्षा और नैना सभी ने अलग अलग तरीके से झलक को खोजने और उसके बारे में जानकारी जुटाने की भरपूर कोशिश कर ली थी, लेकिन उन्हें कहीं से कुछ भी पता नहीं लग पाया था। इस वक्त उनके गुस्से और नफरत की कोई सीमा नहीं थी। मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर झलक इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है। उसके दिमाग में ऐसा कौन सा पावरफुल आदमी है जो इतने अमीर लोगों से पंगा लेने के लिए खड़ा हो गया है। बहुत जल्द मैं उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर लूंगा और फिर देखना कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। जैसे ही रणविजय जी ने गुस्से में ये कहा, सिद्धार्थ तुरंत रणविजय को देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि आपको यहाँ काफी दिन हो गए हैं मिस्टर रणविजय, जाकर अपना काम धंधा भी संभालिए, यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं वो सब हम संभाल लेंगे। सिद्धार्थ ने ये बात पूरे तरीके से रणविजय की बेइज्जती करते हुए कही। रणविजय ठंडी मुस्कान के साथ बोले, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं यहां से जा नहीं पा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक बार जो मैं चाहता हूं वो कर लेने दो, उसके बाद मैं वादा करता हूं सिद्धार्थ खुराना, तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं। ये सोचते हुए रणविजय के चेहरे पर कुटिल सी बड़ी मुस्कुराहट थी। वो तुरंत अपना भोला भाला भाई वाला फेस बनाकर बोला, भैया सिद्धार्थ, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं यहाँ केवल तभी तक हूँ जब तक कि मैं तुम्हारी शादी आकांक्षा ओबेरॉय से नहीं करवा देता। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने दादी को वादा किया है कि मैं खुद तुम्हारी शादी आकांक्षा ओबेरॉय से कराऊंगा। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर सिद्धार्थ ने गहरी नज़र से अपनी दादी की ओर देखा। दादी ने तुरंत अपनी नज़रें चुरा दी और उधर उधर देखने लगी। दादी की कश्मकश समझकर ही शायद आकांक्षा तुरंत बोल पड़ी, ऐसा लगने लगा है जैसे झलक पनौती बनकर मेरी जिंदगी में बैठ गई है। वो जानबूझकर ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट कर रही है जैसे मेरी शादी सिद्धार्थ से ना हो। वो पूरी तरह से अभी भी सिद्धार्थ पर लट्टू है, उनके पीछे पागल है। जैसे ही आकांक्षा ने ये कहा, सिद्धार्थ को दिल ही दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। लेकिन जिस तरीके से आदित्य राणा ने झलक को सबके सामने इतना महंगा नेकलेस पहनाया था और उसके लिए वो नेकलेस खरीदा था, उसे याद करते ही उसके अंदर अजीब सा गुस्सा उमड़ने लगा। आकांक्षा की बात पर उसने घमंड से कहा, तुम्हें उस दो कौड़ी की लड़की के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में सोचकर तुम अपना मूड खराब करो। बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड लेने के बाद। हर साल की तरह इस साल भी ये अवार्ड मुझे ही मिलेगा। जैसे ही मैं ये अवार्ड लूंगा, उसकी ग्रैंड सक्सेस पार्टी में मैं तुमसे शादी करूंगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये फाइनल किया, आकांक्षा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वैसे भी अवार्ड सेरेमनी होने में केवल कुछ दिन ही तो बाकी थे, उसके बाद तो वो हमेशा हमेशा के लिए मिसेस सिद्धार्थ खुराना बन जाएगी। लेकिन झलक की वजह से जो तमाशा हुआ था और ऊपर से वो नेकलेस जो आकांक्षा की आंखों में पूरी तरह चुप गया था, वो उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। उसे एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। फिलहाल सिद्धार्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ था तो वो था झलक को ढूंढ निकालना। जब तक वो उसे ढूंढ नहीं लेता, उसे चैन नहीं मिलने वाला था और ना ही कोई रास्ता समझ में आने वाला था। झलक को ढूंढने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तभी अचानक सिद्धार्थ के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और अगले ही पल वो वहां से उठकर चला गया। वही नैना को कहते हुए देखा गया, आपने देखा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस कचरा जैसी लड़की को मैंने अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया था, वो इस तरह से वापस लौट आएगी और मेरी बेटी की खुशियां छीनने की कोशिश करेगी। अपने हुस्न का इस्तेमाल करके उसने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया है। लगता है कोई फॉरेनर है वो, क्योंकि आदित्य राणा देखने में एकदम गोरा चिट्टा, लंबा तगड़ा और उसकी पर्सनैलिटी बेहद कमाल की है। जल्दी से कोई पहचान ही नहीं सकता कि वो इंडियन है या फॉरेनर।
जैसे ही नैना ने आदित्य को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा, उर्वशी जी तुरंत बोल पड़ी, हमें भी यकीन नहीं हो रहा है। उस लड़की को हमने कितना मान सम्मान दिया, अपनी बेटी के समान समझा, लेकिन हमें तो सपने में भी नहीं लगा था कि वो इस हद तक गिर सकती है। अच्छा हुआ उसके सारे सच हमारी आंखों के सामने आ गए, वरना हम तो अभी तक इसी गिल्ट में जी रहे थे कि वो बेचारी हॉस्पिटल में लावारिस मर गई और उसे मुखाग्नि देने के लिए भी कोई नहीं गया, लेकिन असल में वो जिंदा थी और हमारे परिवारों के खिलाफ साजिश रच रही थी। नैना ने नफरत से कहा, जिस तरीके से वो सिद्धार्थ की शादी में आई और अपने उस बॉयफ्रेंड या जो भी है तुम लोगों की नज़र में शुगर डैडी के साथ सबको दिखाया कि वो कितना पावरफुल है, लेकिन असल में उसकी औकात सिर्फ एक बिस्तर गर्म करने वाली से ज़्यादा नहीं है। दादी ने भी नफरत से सिर हिलाया। वहीं रणविजय अभी भी तिरछी नज़र से बार बार आकांक्षा को घूर रहा था। आकांक्षा उसकी नज़रों से पूरी तरह परेशान हो गई। उसने दादी की ओर देखते हुए कहा, दादी मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं थोड़ी देर गार्डन में जाकर टहलना चाहती हूँ। दादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा ये तुम्हारा ही घर है, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादी की बात सुनकर नैना को भी अच्छा लगा। आकांक्षा हल्की मुस्कान के साथ सीधा गार्डन में चली गई। रणविजय भी बहाने से उठ गया और फ़ोन करने का बहाना बनाते हुए उसके पीछे पीछे गार्डन में चला गया। जैसे ही आकांक्षा थोड़ा आगे बढ़ी, रणविजय ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया।